तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।
ओम शांति। हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी पधारे हैं। आप सबको पता नहीं होगा, आप 5 दिन पहले ही विदेश यात्रा पूरी करके वापस लौटे थे, तो शायद चंडीगढ़ वालों का भाग्य है कि भ्राता जी की क्लास करने का भी आपको लाभ प्राप्त हुआ। आप ज्ञानामृत वर्ल्ड रिन्यूअल सभी पढ़ते हैं, उसमें संपादकीय करके जो लेख आता है वो भ्राता जी के द्वारा ही लिखित है, रचित है। तो आज हम रूबरू भ्राता जी से मम्मा बाबा के साथ के अनुभव सुनेंगे, क्योंकि भ्राता जी ने साकार बाबा की बहुत पालना ली है, तो बाबा के ज्ञान में भ्राता जी समर्पित हुए इस बेहद यज्ञ में 1957 में ही। और आप लौकिक पढ़ाई में भी सदा ही अव्वल रहे, छात्रवृत्ति आप लेते रहे थे। पहले आपने दिल्ली में चित्रशाला बनाई, जिसके द्वारा भारत के सभी सेवा केंद्रों पर वो प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी जाती थी और अनेक आत्माओं को उससे बाबा का ज्ञान मिला। और 1992 में फिर आप शांतिवन बेहद बाबा के घर में आ गए। आपकी बहुत अच्छी विशेषता, आप सरल चित्त, सर्व के स्नेही, सहयोगी, यज्ञ के प्रति ईमानदार, ये बहुत सारे बाबा ने आपके अंदर विशेषताएं भरी है। तो मैं आपके लिए 2 शब्द कहूंगी। आप नए ईश्वरीय ज्ञान को जीवन की चित्रशाला में रेखाओं और रंगों से उभारा। आपने बाबा के इस नए ज्ञान को जीवन की चित्रशाला में रेखाओं और रंगों से उभारा। आपने पुराने अलौकिक अनुभवों को जीवन की पत्रिका में ज्ञानामृत के शब्दों से संवारा, ज्ञानामृत के शब्दों से संवारा। जितने भी आप बाबा की ये ज्ञानामृत में जितने भी बाबा के बच्चों के अनुभव सुनते हैं, तो वो आप ही के द्वारा ही संभव है। आप वो ज्ञानामृत के संपादक के रूप में अभी शांतिवन के बेहद बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी हम आदरणीय भ्राता जी से मम्मा बाबा के साथ के अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे बहन जी ने बताया, कुछ दिन पूर्व हम रशिया में थे, वहां से निमंत्रण आया था कि आप आओ, यही जो आप कह रहे हैं बाबा मम्मा के अनुभव सुनाओ, ऐसे लोग अब कम रह गए हैं। तो क्योंकि अभी तक हम रह गए हैं तो हमको इस बात के लिए बुलाते हैं। अरे देखिए, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन आंसर था क्लास टी, कि आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था। मैंने कहा देखिए, मैं हैप्पियर और हैप्पीएस्ट बताऊंगा, केवल हैप्पीएस्ट नहीं। मैंने कहा हैप्पी मोमेंट वो था जब हमें इस ज्ञान पर ये ज्ञान मिला। आप देखो, आप सभी का भी हैप्पी मोमेंट होगा, इतना ऊंचा ज्ञान, वंडरफुल ज्ञान है, हमें तो बहुत वंडरफुल लगता है, साइंटिफिक है, कोई ऐसा नहीं शास्त्रों की बात मान लो, ऐसी बात तो नहीं है, बुद्धिगम्य है, साइंटिफिक, रीजनेबल है, रीजन है, कोई ऐसे नहीं जैसे भक्ति मार्ग में हां जी कह दिया मान लिया, नहीं, रैशनल है, रैशनल समझते हैं, यानी युक्ति युक्त रैशनल। और भी कितनी हम बातें कहें, अंडरस्टैंडेबल है, यानी सिंपल है बहुत, बहुत वैल्यूएबल मैं कहूंगा इसको, मोस्ट वैल्यूएबल जो चीज हमें मिली वो ये ज्ञान मिला। हम बताएं आपको, वो मेरा एक हैप्पी मोमेंट कहेंगे, हैप्पीएस्ट तो आगे आगे चलेगा, पहले वो हैप्पी मोमेंट था कि इतना ऊंचा ज्ञान मिला, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, पतित पावनी गंगा नहीं है, ये कम बातें नहीं है। आप बातों हम क्योंकि रोज सुनते हैं, हमें लगता है तो सिंपल है, ये रेवोल्यूशनरी चीजें हैं। हम बताएं आप, रेवोल्यूशनरी, किसी को इस दुनिया में पता नहीं कि परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है। बताओ, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये वो रामदेव कोई भी हो, उसे पूछो परमात्मा कौन है, पूछो किससे, कभी वो ब्रह्म कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी हेर फेर करके बता सकते नहीं वो। हम बताएं क्लियर, आप कैसे पूछो परमात्मा हूज गॉड, यहां तो बाबा कहता ज्योति बिंदु शिव है, स्पष्ट कह दिया शिव परमात्मा। किसी को इस बात की इलम ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, कोई भी आत्मा सो परमात्मा, हम ही आत्मा है परमात्मा, ये उल्टा से उल्टा करके बोल देंगे। हम रीजनिंग देंगे तो वो अपने कहेंगे हम तो, आप तो क्या, हम तो संस्कृत जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, वो ऐसी उल्टी सीधी, अब सुनेंगे नहीं हमारी बात। हाँ, आप तो सुनने लगे, पहले कहां सुनते थे। तो ये जो मेरा हैप्पी मोमेंट था कि आप आत्मा है, पहला लेसन मिला हमें, हमारे भाई थे ओम प्रकाश भाई, वो इंदौर जोन के डायरेक्टर थे, अब तो श्री छोटे हमारे से इकट्ठे हम पढ़ते थे आपके ही पंजाब में पटियाला में थापर इंस्टीट्यूट, आपको मालूम हो हम वहीं के निकले हुए पढ़ते थे, तो वहां हमारे साथ साथ कमरा था, उनने कहा आप आत्मा है, हमने कहा हम तो आत्मा नहीं है, बताओ कैसे आत्मा है, डिस्कशन करते रहे, वो आत्मा मैं, वो शरीर है तो शरीर में कोई एक पुर्जा खराब होता है तो खत्म हो जाता है, आत्मा की क्या बात। कई दिन तक बहस होती रही, हम भी सुनते रहे वो भी सुनाते रहे, तो क्योंकि मानने की इच्छा नहीं थी, तो एक दिन उसने कहा भाई आप मान जाओ कि आप आत्मा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आज मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, बस ये बोला, उसी वक्त हमें अनुभूति होनी शुरू होगी। हम बता दें आप, उसी सेकंड से वो जो बॉडी कॉन्शियसनेस था ना, जो हम बहुत बॉडी कॉन्शियस पिक्चर देखना, आप माने कि हम पटियाला से जाते थे अंबाला पिक्चर देखने के लिए, आप तो अंबाला को जानते, पटियाला को भी जानते, हम पटियाला में पढ़ते थे भाई नई पिक्चर आई है चलो जाके अंबाला से देख के आते हैं, अंबाला में बहुत कैंट में बहुत वो थी सिनेमा घर थे, तो देखिए हम इतने वो थे, तो जब ये बॉडी कॉन्शियस था, खाना पीना ये ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं लेकिन फिर भी था, जब ये कहा कि आप आत्मा है और मैंने कहा यस आई एम सोल, उसी समय से अनुभव होना शुरू हो गया, जैसे बाबा ने पकड़ लिया, क्योंकि उस समय क्या था, कोई स्टूडेंट तो थे नहीं, बहुत कम स्टूडेंट थे, हजारों भी नहीं होंगे, सैकड़ों होंगे, हम जब 1957 में आए, 57 की बात है, वो आप में से कहीं पैदा भी नहीं होंगे, तब हमें ज्ञान मिला शायद, तो उन्होंने कहा कि आप आत्मा, मैंने कहा आज मैं कहता हूं आत्मा, इतना अनुभव होने लगा जब बॉडी लेसनेस की फीलिंग हुई, और लिखना शुरू कर दिया आई एम सोल नॉट बॉडी, बहुत लिखा डायरी पे, कोई भी जगह मिले आई एम लिख रहा था मैं आत्मा हूं, ताकि बॉडी कॉन्शियसनेस दूर हो, तो फीलिंग आई, बहुत अनुभूति हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ा हल्कापन महसूस हुआ, यानी उसी एक दिन में ही हो गया सब, सब चीज बदल दी, फिर तो खान पान रहन सहन सब, हमने कहा तो बहुत बड़ा बहुत अच्छी बात है, तो शांति का अनुभव हुआ, खुशी का अनुभव हुआ, इसकी एक बात सही, अभी और ज्ञान तो सुनाया नहीं, मैंने कहा आप सुनाओ जी और क्या चीज तुम्हारे पास है, जब ये इतनी एक बात से ऐसा मालूम है और सुनाओ, फिर उन्होंने परमात्मा शिव है, ये भी नई बात सुनी हमने, हमारे यहां कुरुक्षेत्र में है मंदिर, एक दुख भजनेश्वर स्थानेश्वर विश्वेश्वर बहुत मंदिर है, लेकिन किसी को पता नहीं ये कौन है, हम जाते थे जब पढ़ते थे गीता स्कूल में वहां कुरुक्षेत्र में, तो किताब लेके उस मंदिर के पास लाके बैठते थे, देखते ये शिवलिंग है और आसपास सांप घूमते रहते थे, तो कहते ये सांप जो है शिव शिव इस शिवलिंग के ही कुछ है दोस्त है या क्या है, तो मतलब कहने का कुछ जानता है नहीं इंसान, शिव क्या है और शंकर क्या है कुछ जानते नहीं, पर शिव शंकर में अंतर है, परमात्मा शिव है, बड़ा अच्छा लगा और सारा ज्ञान उसने सुनाया, तो हमें किसी बात में संशय नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो सुनाते हैं मैंने ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या कमाल है आप वास्तव ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान। कहा सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का है, महंगे बिल्कुल ठीक है, गीता में कहा है, मिलते रहेंगे, सृष्टि रिपीट्स, हिस्ट्री रिपीट्स, ये गीता में है। तो जो वो बातें सुना सब बिल्कुल एक्यूरेट लगे और ठीक लगे और आनंद आया, मजा आया। मैंने कहा ये तो बड़ी बहुत सुंदर बात है ये। तो मैंने योग मुझे भी सुननी शुरू कर दी, उसी दो दिन की हमने पहले सुनी हुई है। ऐसी फीलिंग है कि बाबा के नजदीक के बाबा के बच्चे लगते हैं, ऐसा है। तो मैंने उसको कहा भाई अभी 4-5 दिन हुए, आपको ज्ञान मिला कहां से? अभी उस वक्त त्रिमूर्ति भी नहीं छपा था, ना झाल त्रिमूर्ति छपा हुआ नहीं था उस वक्त, अभी ना अभी शिव ब्रह्मा चित्र भी नहीं देखा था। हमने कहा ये कहां से मिला ज्ञान आपको? उसने बताया जी वो है ये त्रिमूर्ति है, शिव बाबा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सारा ये भी समझाया। तो कहने का मतलब यह है, ये ज्ञान सुन के हमको निश्चय हुआ। किसी के कोई प्रेम प्यार कोई दीदी दादी तो कहते नहीं थे, सब बहने कोई मिली नहीं, कोई नहीं मिला हमें, तो वो ओम प्रकाश बहने ज्ञान दिया। तो निश्चय बुद्धि हुआ कि अब बिल्कुल विनाश सामने है, दुनिया जाएगी, कलयुग जाएगा, सत्ययुग आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखो कहां पर पहुंचे हैं आप, यहां ये कौन सी धरनी पर आए आप, क्योंकि कौन सी धरनी है ये, किसकी है ये? यहां जिसके द्वारा बाबा शिव बाबा भगवान शिव ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ज्ञान गीता ज्ञान सुनाया, ज्ञान की बंसुरी बजाई। जो लोग कहते हैं वो जमुना तट ये वो वहां उसने सुनाया था श्री कृष्ण ने, लेकिन एक्चुअली इस धरणी पर बाबा ने ज्ञान सुनाया। और मातेश्वरी जहां ज्ञान सितार बजी, जहां बाबा मामा के कमल चरण पड़े, जहां बाबा ने बच्चों को पालना की, उनको टोली खिलाई, उनसे मिले, कितनी पावन धरणी है ये बताओ। और आपको ये चांस मिला है कि ये यहां भट्टी करने का, ये स्पेशल भाई और रिचार्ज होने का। चार्ज तो आप है ही, आत्मा चार्ज है, लेकिन और ज्यादा चार्जिंग करने के लिए आप यहां आए। बहुत बहुत क्या कहेंगे आपको, क्या कहेंगे? हाँ, पद्मा पदम, भाग्यशाली भी नहीं, सौभाग्यशाली भी नहीं, क्या है? पदम पदम, पद्म। बाबा ने मुरली में कहा ना, भाग्यशाली तो है ही, सौभाग्यशाली तो है, सौ क्या, अब तो हम पद्मा पदम। हमारा जीवन कैसा है? पदम के समान है जीवन, तो कमल फूल समान है। तो ऐसे आप धरणी पर आए हैं जहां स्वयं बाबा ने ब्रह्मा बाबा के चरण पड़े, शिव बाबा की उसकी वही चरण तो उनके ही है, मम्मा के, दादियों के, कितनी यहां की ऊर्जा और कितनी यहां की वो है, यानी शक्तियां हैं यहां, बताओ। तो आप, मैं समझता हूं आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया होगा, और ज्यादा कितने दिन रहने वाले, 2-3 दिन और होंगे, और आप करेंगे और भर के जाएंगे, ताकि अच्छा है ये बात। तो मैं बता रहा था, तो हम तो कहते हैं कभी हम ब्रह्मा बाबा की बात सोचते हैं, ब्रह्मा बाबा से मिले हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, 57 से 69 तक मिलते ही रहे उनसे। हाँ, दूसरा जो हैप्पियर मोमेंट तब था जब मैंने बताया हमें बताओ कि किन से ज्ञान आपको मिला है। उन्होंने कहा ये तो शिव बाबा है, ब्रह्मा तन में आकर जो ज्ञान देता है वो है, और वो दिल्ली में आए हुए हैं। मैंने कहा मैं भेजो, हम मिलके आए, अभी 5-7 दिन हुए थे, तो हम चल पड़े बाबा मामा से मिलने के लिए। तो पहुंचे दिल्ली में, फर्स्ट टाइम दिल्ली में थे, रात्रि को 11 बजे पहुंचे, पता नहीं है उन दिनों में टेलीफोन भी नहीं होते थे खास, कैसे मालूम था। अब चले गए बाबा वहां, तो सवेरे बाबा मामा से मिलना हुआ, और बाबा मामा को देख करके उनकी बाबा की तो शाइनिंग फेस था, टावरिंग, कितना 6 फुट का तो कहा, टावरिंग पर्सनैलिटी थी, और बिविचिंग आईज मैं कहता हूं, उनकी आंखें भी जादू वाली जैसी थी, ऐसे खींचने वाली थी, जैसे देखा मिले, गोद में गए। हम तो कुछ ने कहा नहीं था क्या कैसे मिलना है, तो बाबा के गोद में गए, मम्मा के गोद में गए, भाकी पहनी जैसे, बाबा मम्मा ने प्यार किया। और देखो बाबा ने पहला वरदान क्या दिया, आप सुन के आश्चर्य कहेंगे। तो वो मेरा हैप्पियर मोमेंट था, हैप्पी वो था, बाबा मम्मा से मिलकर के हैप्पियर हो गए, और ज्यादा खुशी हुई। और तो बाबा ने क्या वरदान दिया, बाबा ने कहा तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, चार साल पढ़ने, अभी पहला साल था, चार साल पढ़ना है, ये इंजीनियरिंग तुम्हारी काम आने वाली नहीं है। आप बताइए, एक नया सात दिन का जिज्ञासु, अभी नया, हम तो नहीं समझा, बाबा ने निश्चय बुद्धि तभी तो कहा, तो बाबा तो देख के परख लेते हैं अभी ये कैसा है कैसा नहीं है। तो मुझे कहा कि बच्चे ये तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो मैंने कहा फिर पढ़ना किस काम के, पढ़ना ही क्या फायदा है, पहले वैराग आ गया था सात दिन में ही, तो विनाश सामने खड़ा है, लगता भी था विनाश सामने, जब से हमें आए विनाश लगता है सामने, कोई ना कोई ऐसी बेचैनी होती है दुनिया में, अब भी बेचैन है दुनिया, अब देखो आप आईएसआई क्या झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह झगड़े बढ़ते गए, कोई कम नहीं हुए, लगता है विनाश आज नहीं तो कल होना ही है, तो पक्का है। भगवानों वाज क्या कह रहा बाबा, भगवानों वाज जो कुछ तुम अभी देखते हो, जो कुछ भी देखते हो, ये दिखने वाला नहीं है, और जो नहीं देखते हो वो दिखेगा, वो सत्युग आएगा। कौन बोल रहा है, कोई इंसान नहीं बोल रहा, हु स्पीकिंग, स्वयं भगवान बोल रहा है, उसके माँ वाक्य हैं, वो निश्चय बुद्धि, हम निश्चय हमें कि ऐसा होना है जरूर, आज नहीं तो कल, ये दुनिया जानी है, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। तब बाबा ने कह दिया बच्चे तुम्हें पढ़ाई तो काम नहीं आएगी, तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं पढ़ाई नहीं पढ़ता, तो पहले ही दिन ही बता दिया बाबा ने। हम वहां से वापस आए तो हमें लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, और बाबा ने भी इंग्लिश में विद इन टू डेज जवाब दिया, दो दिन में जवाब दे दिया, पता नहीं उन दिनों में बहुत जल्दी पोस्ट आती थी क्या मालूम। तो हमने कहा बाबा इंग्लिश में लिखा, आई डोंट वांट टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग बट आई वांट टू बी ए स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस, माने इतना बड़ा जो आप सत्युगी महल बना रहे हैं, सत्युगी दुनिया जो स्थापन कर रहे हैं, उसमें हम भी एक स्टोन बनना चाहते हैं, एक फाउंडेशन स्टोन को या कुछ भी को। और मैंने कहा आई डोंट वांट टू डिजाइन हाईवे, हमारा सिविल इंजीनियर था रोड्स, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे लीडिंग टू परमधाम एंड देन गोइंग टू गोल्डन एज, ये लिखा। फिर मैंने कहा उन दिनों में पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों इकट्ठे होते थे, मैकेनिकल सिविल भी, आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी, बाबा उन दिनों में कहा करते थे, अब भी मुरली में कहीं कभी बहुत थोड़ा आता है, ये किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, आई वॉन्ट बी ए पार्सल ए पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। बहुत सुंदर लिखा उसको, हाशिया बॉर्डर लगा के हाथ से लिखा, उन दिनों में तो कंप्यूटर होते नहीं थे, बड़ा लिख के आत्म पर लिखा। तो बाबा का फौरन जवाब आया, बाबा ने कहा इसको तो वराग आ गया, मैंने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी, लेकिन लौकिक भी देखो कैसे है क्या है, क्या बच्चे बी पेशेंट। बाबा इंग्लिश में जो आया रेड पेंसिल से होता था, बाबा क्या करते थे रेड पेंसिल से ही लिखते थे, बड़ा बड़े दो चार पांच छह सात आठ पेज लिख के, और बहुत बड़ा बड़ा लिखते थे, और उसमें फिर ईशु दादी और यार बिचोरदन दादा उसको हिंदी लिखते थे, बाबा ने क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता था, स्वयं ईशु दादी को पढ़ना मुश्किल था, तो वो हिंदी में लिखते थे, यही लिखा बाबा बच्चे बी पेशेंट, इंग्लिश में लिखा बाबा ने, बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स, उनको सुनाओ और साथ साथ अपने लौकिक परिवार को भी सुनाओ, ज्ञान दो। तो हमने ये देखा जो बाबा ने कहा हमने उसको करने की कोशिश की। अब बाबा कहता आठ घंटे योग करो, वो तो नहीं हो सकता हमारे से, हम बताएं क्लियर, लेकिन बाबा और जो कुछ कहा स्थूल में जो भी कहा वैसा हमने करने की कोशिश की। तो हम कहा ठीक है, हम सब इंजीनियर्स को ज्ञान देना शुरू कर दिया। वो एक उन दिनों में त्रिमूर्ति निकलती थी, बहुत मोटी त्रिमूर्ति होती थी, और वो उसमें कई उसमें एक दफा रशिया अमेरिका बैठे हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, कई प्रकार की होती थी उस टाइटल। हम वो उन दिनों में भेजते थे सब सेंटर पर, फ्री भेजते थे क्या, हम 10-20 ले चलते थे, जो हम उसी बस में बैठते थे जिसमें हम जाया करते थे पिक्चर देखने, सारी बस में बांट देते थे पढ़ो भैया आप लोग। और जब मनु राजपुर आया, रातपुर आप जानते हैं, या उसके अंबाला कैंट आया, हम उतर आते थे सबसे वापस लेते थे। अच्छा बताओ बांट के भी, अच्छा जो होते थे छात्रिक हमारे स्टूडेंट होते थे काफी, क्या पढ़ा आपने इसमें भाई, कहते ये आपका ज्ञान कैसे है, एक पेज खोलो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, आज तक किसी ने नहीं कहा, दूसरा पेज खोलो गीता का अमृत श्री कृष्ण नहीं है, तीसरा खोलो पतित पावनी गंगा नहीं है, चौथा खोलो दुख 84 लाख गुना नहीं है। कहते ये ज्ञान कहां से आपको मिला, वो स्टूडेंट कहते थे। तब मैंने कहा आप मेरे साथ अभी बात करो, जब सर्वव्यापी की बात होती हम फटाफट उस बात तो तुम्हारी राइट है, वो समझ जाते थे, ऐसा जोश था हमारे में, ऐसा मोमेंटम था, एंथुजियाज्म था, कहते बात तो आप ठीक कह रहे, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। ऐसे 5-7 हमारे स्टूडेंट ही बन गए, मामा हम अपने अपने कमरे में क्लास शुरू कर दी, जो हमारा हॉस्टल का रूम था वहां दरी बिछा दी, लाल बत्ती जला दी, उन्होंने शिबा बनी थी, लाल बत्ती जला दी, और क्या लाया पता है आपको, ग्रामोफोन लाया, उन दिनों में कोई टेप थोड़ा था, ग्रामोफोन था वो जो होता था थाली वाला, और उसमें वो सुई लगाते थे, वो बजाने शुरू कर दिया, और ये योग करो तो वो सब आते थे सुनते थे, ओम प्रकाश हम दोनों सुनाते थे उनको, वो कई स्टूडेंट बन के मारे वो, तो वो हमारा वार्डन कह ये क्या हो रहा है आप, क्या वो जो था ना हॉस्टल का वार्डन कह रहा है तुम क्या करते हो सवेरे सवेरे उठ करके, ये गीत बजाते हो, ये करते हो, तुम्हारा क्या है चक्कर। मैंने कहा ये हमारा तो ये हम सुनाते हैं ज्ञान, कहते हैं यहां नहीं हो सकता, हमने छोड़ा हॉस्टल क्योंकि हम तो फ्री थे, ओम प्रकाश भाई फ्री नहीं थे, उनको तो बंधन था लौकिक माँ बाप का, हमारे लौकिक माँ बाप तो गांव में रहने वाले, हम क्या कर रहे हैं पता नहीं उनको, हम तो हॉस्टल छोड़ के, हमारे लक्ष्मण जी थे बड़े वो हिमाचल में का, तो पैसे तो वही भेजते थे, हम अपना क्या किया, अब बाहर में कमरा ले लिया, संदल ले लिया, दरी बिछा दी, अपने बर्तन भी ले लिए, अपने खाना बनाने के लिए खुद खाना बनाएंगे, अज्ञानियों का क्यों खाएंगे, उनको बुलाया तुम भी खाना यहां खाओ, हमें 90 रुपए मैस के देने पड़ते थे, उस वक्त 90 रुपए की बहुत वैल्यू थी, आजकल तो कुछ वैल्यू कुछ भी नहीं है, 100 रुपए अभी भी कुछ नहीं है, 90 रुपए अभी हम अपने 20 रुपए में खाना खा लेते थे दोनों, 40-50 रुपए में, तो जो वो पैसा बचता था हम कहते सेवा में लगाओ, फिर कभी किसी को सेवा करो, कभी कहीं ऐसे सेवा करते थे वो, तो बाबा ने कहा ना सेवा करो, अपने इंजीनियर को ज्ञान भी दिया बहुतों को, कई स्टूडेंट बन के हमारे पास, लेकिन फिर वो चले नहीं चले, बाबा मामा से मिला सब कुछ किया, अभी कोई चीफ इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, जगह जगह है वो जाते हैं, हमारे जब बहने उनको राखी बांधने के लिए, कहते ये हमारे वो आत्म प्रकाश ओम प्रकाश भी थे, वो बोलते हैं अभी, कहते हाँ अभी वो है, कोई एक जिंदा है एक चला गया है। इस प्रकार से हमने उनकी सेवा की, तब भी वो ज्ञान में कुछ चले थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं चले, वो कह रहे थे पहले क्या हम इंजीनियर पास कर ले फिर चलेंगे, फिर नौकरी लग जाएगा फिर चलेंगे, तो चलते चलते वो भाग गए, मतलब कहने का मतलब बाबा ने जो कहा तो अपने इंजीनियर्स को ज्ञान तो हमने वो दिया, फिर क्या लौकिक घर वालों को ज्ञान दो, तो हम लौकिक घर में गए, माता पिता को पहले माता जी को पकड़ा भी ज्ञान सुनो, हमारे पिताजी बड़े भगत थे जबरदस्त, उन्होंने हमें भक्ति सिखाई थी, वो भागवत पुराण तो पढ़ते रहते थे, वो जगह जगह सुनाते भी थे, वो हकीम थे, और जब रात्रि को 8 बजे जाके कभी किसी महल्ले में बहुत पढ़ते थे, वो श्री कृष्ण के बहुत भगत थे, उनको हमने ज्ञान सुना, कह रहा ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, राइट बात तो, उनको भी अच्छा लगा ज्ञान, माता जी को भी अच्छा लगा, जिसको सुना है सबको अच्छा लगे, हमारे में बड़ा वो मोमेंटम बहुत था, हम घबराने वाले नहीं थे, हम तो रियल बात थी जो, तो अब उनको सुनाया, उसने कहा बात यह है ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका बाबा हमको कुछ दिखा दे, उन्होंने शर्त रख दी। मैंने कहा मुझे तो कभी दिखा नहीं कुछ, मैं अभी तो कोई आप किसी दादी से, उन वो दादी नहीं कहता, किसी बड़ी बहन से भी नहीं मिले, ना कि सेंटर पर गए, ना कुछ है, तो हम कैसे दिखाएंगे। उसने कहा वो क्या, उनको हमने लिख दिया आत्मा में, कमेंट्री होती है जो, वो खेतों में जाएंगे अंदर अंदर बोलते जाएंगे, आत्मा हूं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे बोलते आते थे, उनको अनुभूति हो रही थी, लेकिन उन्हें शर्त रखी मैं तब मानूंगा जब आपका बाबा को दिखा दे। हमने कहा मैं तो क्या कर सकता हूं, हमारे पास एक ध्यानी दादी थी, शायद जानते होंगे आप लोग, वो अंबाला में, वो हमारे पटियाला में आती थी, अब जब हमारा छोटा सेंटर बन गया ऐसे, तो आती थी और वो ध्यान में जाती थी, भोग लगाती थी, यूं हाथ करती थी, कभी वो टोली दे, कभी वो फूल दे, कभी कुछ हमने नयों को, तो हम कहते थे भाई ये कैसे कह सकते हैं हमें, वो तो हम तो पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं था, और बाबा मुरली में कहते थे ध्यान कोई दीदार कोई काम की चीज नहीं है, बाबा ये भी कह देते थे, तो मैंने कहा जी मैं तो जाता नहीं, आप बाबा से रिकमेंडेशन कोई करें तो आप जा सकते हैं। तो एक दफा हम वहां भोग लगा रहे थे, मैं हम माता जी और सारे दो चार पांच सात और भी, वो एकदम उठ के खड़े, मैं रियल बता रहा हूं, उठ के खड़े गए हो गए वो हमारे लोग एक पिताजी, वो बड़े भगत थे और बड़े सात्विक थे, नहीं बड़े भोले भाले थे बाबा के बच्चे। तो उन्होंने कहा वो कभी किसी किसी को इधर पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, पकड़ना शुरू कर दिया। मैं बड़ा खुश रहा हूं, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है शायद। तो देखा कुछ समय के बाद वो नीचे आ गए, बड़े उदास, बड़े उदास। मैंने कहा क्या हुआ जी, आप क्या कहां गए थे और क्या हुआ? कहते मैं कहीं ऊपर गया तो बहुत छोटा बच्चा, सिडिकेशन, बहुत ब्यूटीफुल, वो तो उर्दू जानते थे, बहुत सुंदर था। हाँ वो अब मुझे याद नहीं, मुल्तानी में क्या बोला कि इतना सुंदर, कहता वो था श्री कृष्ण, देख के मैं तो उसको पकड़ूं वो मेरे हाथ नहीं आया, यहां जाऊं तो वहां, यहां जाऊं तो वहां, मुझे फिर मैं तो बड़ा उदास हो गया। मैं तो जाता था श्री कृष्ण गोद में लूं, मैं बिठाऊं, तो क्या हुआ फिर? कहता उसके बाद वो गायब हो गए, तो आपके बाबा जी आए, बाबा जी बताया, और पता था उनको शायद। फिर उसने कहा, बाबा ने कहा कि आपके बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम धारणा करोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, बाबा पर फेथ करोगे, ज्ञान पर फेथ करोगे, तब श्री कृष्ण बच्चा आपके गोद में आएगा। बाबा ने भी शर्त रख दी। तो वो तो थे तो एजेड होंगे, 60 साल के, पता नहीं क्या एज थी उनकी। तो पवित्र ये तो था ही अपना, वो सब जो हमारा वो नाना धोना जो होता है, खाना प्याज लहसुन सब बंद करके ज्ञान योग शुरू कर दिया। फिर अगले गुरुवार को फिर हमने भोग लगा, हम समर वेकेशन में घर गए थे क्या, तो फिर वो भोग में वो चले गए ट्रांस में। फिर श्री कृष्ण उनको मिला, उसको गोद में बिठाया, बड़ा आंसू बहाया, बहुत उनको खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। फिर नीचे आए, फिर बताया कि आज मेरी जो मनोकामना थी, जो बाप भक्तों की है ना, बाप भक्त वत्सलम भी है, शिव बाबा जो है भक्त वत्सलम है, भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करता है, उनकी इच्छा पूर्ण हुई और वो ध्यानी बन गए। इतना उनको जब हम कहें बाबा से पूछ के, बाबा से पूछ के आते थे, कोई संदेशा लाना हो तो आप बाबा से पूछ के, बाबा से ऐसा एक्यूरेट बताते थे कि बात मत पूछो। जब मैंने बाबा को लिखा, बाबा हमारा लौकिक फादर ध्यान में जाता है, तो बाबा ने लिखा, बच्चे मैंने ही बहुत ध्यान दिया, देखे यानी उनको कोई वैल्यू दी नहीं, मुझे तो बहुत वैल्यू थी कि हमारे लौकिक फादर ध्यान में जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने लिखा, मैंने पत्र लिखा बाबा को, बाबा ने कहा कि मैंने भी बहुत ध्यान देखा है, बहुत साक्षात्कार किया है, यानी ही डिड नॉट गिव वैल्यू टू एनीथिंग ऑफ द ध्यान, और मैं बहुत वैल्यू दे रहा था कि ध्यान में जाना बड़ी बात है, हम जो संदेश लें वो पूछे बताया, मैंने कहा कमाल है। वो जब मधुबन में आते थे, जब बाबा मम्मा से मिले, तो वो मम्मा जब बाबा होते थे बॉम्बे, या मम्मा उनको संदिल पर बिठाती थी, यहां ये हिस्ट्री हॉल में भाई भोग लगाओ, बड़े अच्छे शुद्ध और वो थे, नहीं क्या कहना चाहिए, सात्विक व्यक्ति थे वो, बड़े भगत टाइप के भी थे। तो वो फिर उनके ज्ञान में आने से फिर सारे लक्ष्मण जी हमारे बड़े भाई, दो भाई बहन, सब ज्ञान में चल पड़े, लौकिक माता तो हमारे ज्ञान में थी, सब कुछ फिर हम चल पड़े ज्ञान में, पूरा परिवार अभी तक एक हमारा चला गया, बाकी सारे अभी से जिंदा है, यानी माता हमारी माता जी 111 साल 10 साल की है, अभी भी जिंदा है, हमारे साथ रहती है। लेकिन अभी अब बोल चाल बंद है, पता नहीं क्या है, कुछ है चोट लगी है, मतलब कहने का शी इज अलाइव। तो इस प्रकार से फिर हमें उन दोनों में क्या था, अभी सेंटर खोलो, उन दोनों में तो सेंटर कम थे, बहनें बहुत थी। फिर हमारी दादी जानकी हमारे पास आई एकदम, उनको हम लेके आए, तो उन आते ही ब्रह्मा भोजन बना दिया, खिलाया, अभी भी याद है दादी को कि हमने आपको भोजन बना के खिलाया था, वो कड़ी बनाई, ये बनाया, मतलब इस प्रकार से फिर रिमझिम शुरू होगी। फिर कई दफा मधुबन बाबा से मिलने के लिए आए, पहले दिल्ली में आते थे, पहले तो एक दफा मैंने अभी नए नए जब फर्स्ट टाइम हम गए थे, मम्मा हमारी ब्राह्मणी थी लीला चटनी, जो शाहबाद में रहा करती थी, वो हमारी ब्राह्मणी होती थी, मैंने उससे कहा यहां कोई भंडारी रखी हुई नहीं है, कोई किसी को कहता नहीं कि कहां पैसे डालो, कुछ करो, कोई लेता नहीं, कोई मांगता नहीं, कोई कहता नहीं, ये चल कैसे रहा है? तो मम्मा साथ थी, उन्हें मम्मा से कह दिया, मम्मा ने कहा, मुस्कुराई मम्मा, जब भी कोई बात करती थी इतनी उनकी, पहले मुस्कुराते थे, जब कोई जवाब देंगे ना मुस्कुरा कर कहा, ऊपर इशारा ऊपर से आता है, नहीं कोई बताया नहीं किसी ने कैसे चलता है, बाद में मालूम पड़ा भी कैसे चलता है, लेकिन इतना रॉयल्टी थी कभी कोई कहता नहीं था अभी ये यज्ञ चल कैसे रहा है। तो ये भी एक बार ने सीखा। फिर इस प्रकार से हम यहां एक बार मधुबन में आना शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम जब मधुबन में आए तब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे और उस वक्त कुछ नहीं था, ये हिस्ट्री हाल नहीं था, वो शांति स्तंभ तो था ही नहीं, सारा खाली था। ये भी नहीं था, केवल एक टीन वाला जो मकान है ना इतना ही था बस, वो भी ऐसा इतना बढ़िया नहीं था, जिसमें एक में मम्मा कमरा था, एक बाबा का था, एक जहां यीशु दादी का है वो था जो ऑफिस, और उसी जगह पर ही क्लास लगती थी, वो दरी बिछा के अपन टाट बिछा के वहां हम क्लास करते थे और कुछ नहीं था यहां पर। हम जब आए एक दिन बाबा जो थे, तो उसकी बताओ हिस्ट्री आपको, बाबा ने क्या बोला, कुछ खेल रहे थे यहां हम सब बच्चों के साथ, जो है ना ये लान था वो ग्रीन उसका टेनिस कोर्ट था जो पीछे जहां भी शांति स्तंभ है, बाबा को देखा वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों को क्रिकेट खिला रहे हैं, वो एज क्या थी 81, 81 साल की एज में बाबा बच्चों के साथ, दादा विश्वरतन गेंद फेंकते थे बाबा लगाते थे, बच्चे फेंकते हंसते थे और पकड़ते थे। मैंने कहा देखो यही जमुना का कंठा होगा शायद, जहां पर वो नहीं श्री कृष्ण ने गेंद फेंकी, हमने भागवत बहुत पढ़ी हुई थी, तो मैं देखा एक बुजुर्ग बाप और बच्चों को ऐसे खिला रहा है, बड़ा कितना जबरदस्त सीन था वो। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, मेरे पास कैमरा था, बाबा ने खेल बंद किया, बाबा ने कहा बच्चे फोटो मत लो। मैंने ठीक है, तो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, जो क्या बाबा ने बोला, बाबा कभी अपने को सामने नहीं लाते थे, ब्रह्मा बाबा, बाबा ने कहा बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये, ब्रह्मा बाबा का भी चित्र तो नहीं आएगा उस आत्मा का, मेरा तो फोटो आएगा नहीं, और ये शरीर छी किसी काम का नहीं, बाबा ऐसे कहते थे मुझे। शरीर को देखना, बॉडी को देखना या बॉडी से कोई भी कनेक्शन रखना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा हमेशा कहते आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, आत्मा से सुनो, और मुझे जब मिलते हो किससे मिलते हो, जब कोई बहनें भी मिलती थी, भाई भी मिलते थे, कन्याएं भी मिलती थी, माताएं भी मिलती थी, कल पूछता था किससे मिलने आ रहे हो, शिव बाबा से मिल रहे हैं, गोद बाबा देते थे, बड़ा प्यार करते, क्यों ही वाज कौन थे वो, यानी वो यानी आदि पिता शिव, ब्रह्मा बाबा आदि पिता और शिव बाबा उसमें अनादि पिता, वो आकर के गोद देते थे, वो बड़ा सुख मिलता था। ऐसे मम्मा सरस्वती उनकी भी गोद में, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब मम्मा की गोद में जाते थे और कहते थे कि किससे मिल रहे हैं। तो बाबा बार बार ये कहते थे अपने को आत्मा, अभी भी देखो मुरली में आता है, देखो क्या आता है बार बार, आत्मा समझो, हमेशा कहते हैं देही अभिमानी बनो, कैसे बनेंगे देही अभिमानी, इसका भी एक हाउ टू बिकम, कहना तो आसान है देही अभिमानी बने कैसे। तो इस प्रकार से बाबा ने शिक्षा दी बच्चे किसी चीज को ना देख करके शिव बाबा से बात करो, शिव बाबा को देखो। मैंने कहा ठीक है, फिर बाबा ने कहा चलो बच्चे बच्चे आपका दिल है ले लो फोटो, हमने लिया लेकिन रखा तो नहीं फोटो। इस प्रकार से हुआ मिलना, फिर तो कई दफा आए कई दफा गए, तो इसी प्रकार से करते पढ़ते हमारी वो इंजीनियरिंग पास होने के करीब आ गए, पास हो गए। ये हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, हम बताएं आपको, अभी कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी बाबा आ रहा है, कभी प्रदर्शनी है, कभी कहीं कोई कुछ हो रहा है, कभी दादी जानकी जी आ रहे हैं, हम तो इसी में बिजी रहते थे पटियाला में, कभी सेंटर खोल रहा है, आपको मालूम हो पटियाला से कई सेंटर खुले, चंडीगढ़ भी पटियाला से खुला था, हम बताएं आप, हम लोगों ने इश्तहार लगाए थे वो वहां पर छपा के, एक वो इश्तहार छपा था ट्रुथ आर लाइक एरोस ऐसा था वो सारे पॉइंट्स, और भाई हमारा सेंटर खुलने वाला इश्तहार लगाए थे, अगले दिन उन लोगों ने फाड़ दिया क्योंकि माता इश्तहार लगाना मना था, हमने तो लगाए थे। तो इस प्रकार से वो भी सेवा केंद्र वहां से खुला, वहां हम गए, मकान लिया था किराए पर, पहला जो मकान लिया था चंडीगढ़ का, उसका किराया पता कितना था, 140 रुपए, अब कितना है, अब तो अपना घर का मकान है, तो किराया 140 रुपए था और 6 महीने का एडवांस देना था, देखिए वो भी देना बड़ा मुश्किल होता था, ऐसी यज्ञ थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग नाभा ये वो और आसपास कुरुक्षेत्र ये वो सेवा केंद्र खोले। बाबा क्या कहते थे, पटियाला के गोप जो है बड़े बहादुर है, कोई भी छोटा सेंटर भी खोल दो तो बाबा मुरली में कहते थे पटियाला के गोप बड़े बहादुर है। हमारी सगाई हो चुकी थी, वो टूट गई, ये तो आदमी के ज्ञान में चला गया, तो बाबा को पता लगा, बाबा ने मुरली में कह दिया, देखो कैसे इन्होंने खत्म हुआ। तो बाबा को बहुत छोटा परिवार था ना, छोटा परिवार था, सब बाबा सबको जानते थे, मम्मा बाबा सबको जानते थे, हम भी जानते थे, तो जिससे कि बाबा को पता लग जाता था क्या क्या कहा हो रहा है। ऐसे करते करते आप मानेंगे बिना कुछ पढ़े, हम तो बिजी रहते थे इन कामों में, जाएंगे हफ्ते के बाद क्लास में जाएंगे, वो कहेंगे देखो आज हफ्ते के बाद आएगा, वहां तो क्लास कैसे, अगर आप एक दिन लेक्चर मिक्स करो इंजीनियरिंग का, आप इंजीनियर बैठे होंगे, अगले दिन समझ नहीं आएगा, हम समझते ही नहीं थे, हम बताएं आपको पता नहीं फिर भी कैसे पास हो गए, इट ए वंडर। हम वैसे टॉप थे स्टूडेंट, लेकिन जब ना पढ़ने के बावजूद भी हम पास हो गए, बताओ। लेकिन जब हम आए थे तो टॉप स्टूडेंट थे, हम बताएं क्लियर आपको, इंटरेस्ट था नहीं पढ़ाई में, पास जब हुए यूनिवर्सिटी में लास्ट स्टूडेंट थे, ये देख लीजिए। आई हैड नो इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्टेड थे, क्या करना पड़ गया, जब बाबा ने कहा विनाश सामने करा है और मुझे बाबा ने वरदान दिया कि पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, तो क्या हु इज स्पीकिंग, कौन बता रहा है ये, निश्चित तरह भगवान ने कहा है। तो जब हमने इंजीनियरिंग पास कर ली, लोग माता पिता ज्ञान में आ गए, सारे ज्ञान में आ गए, इनको लेके आया मधुबन, बाबा ने कहा मैंने तो कहा था पढ़ाई काम ही आएगी, तो हमको किसी और कार्य में लगा दिया, हमको भेज दिया जगदीश भाई जी के पास, माना इंजीनियरिंग कभी काम नहीं आई, बाबा की महावाक्य ने काम आई नहीं हमारी इंजीनियरिंग, हमें बना दिया और किसी कार्य में, प्रिंटिंग में लगा दिया, पब्लिशिंग में लगा दिया, चित्रशाला में लगा दिया, भिन्न भिन्न कार्य में लगा दिया, सेवा तो करनी है, और ये नहीं कि हम भाई इंजीनियर हैं तो हमारे देह मानो नहीं, चाहे देखो यहां तो गोल्ड मेडलिस्ट भी खाना बनाते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, तो कोई वो पुरानी न डिग्री की परवाह है, न मैं बड़ा हूं छोटा हूं इसकी बात नहीं, तो सेवा करनी है, तो हम वो सेवा में लग गए, जो बाबा ने कहा उस सेवा में लगे रहे, और फिर चित्रशाला बनी, बताया आपको एक तो अभी हैट है, उसमें क्या हुआ, हमने सीढ़ी का चित्र निकला बॉम्बे में, तो हमने उसकी एक बहुत बढ़िया कॉपी बनवा करके बाबा को भेजी, रजौरी गार्डन से दादी प्रकाश मणि, दादा विश्व किशोर आए हुए, उनके द्वारा भेजी, बाबा को बहुत पसंद आई। और उस दिन के बाद ये तीन चार साल बीत गए थे दीदी जी के साथ, बाबा के लेटर आने शुरू हो गए, बच्चे ये बनवाओ ये बनवाओ ये बनवाओ, बहुत तो हमने काम शुरू कर दिया बनाना, हमें लोग घर से वो बरसा भी मिल गया था थोड़ा बहुत, तो शुरू हुआ, तो हमने फिर एक क्या हम 20 चित्रों का सेट में लेकर के बनवा करके आर्टिस्ट आयल पेंटिंग का पहला प्रदर्शनी का चित्र लेकर के बाबा के पास आया मधुबन में, है प्लाईवुड पर उस वक्त तो हाथ से बनता था, थोड़ा कंप्यूटर थे, हर एक चीज हाथ से, शिव और शंकर मेहता परमात्मा का जितने चित्र थे 20 बनाए, तो हाथ से बना के लाए, तो बाबा ने रखवाए, हिस्ट्रियाल बन चुका था, बाबा और दीदी देखने के लिए आया, मैं मम्मा उस वक्त नहीं थी, सारा देखा, एक एक चित्र देखा, बाबा को अच्छा लगा, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, थोड़ा बताया ये फिर बाबा ने बुलाया अपने कमरे में, अब ना हैप्पियर मोमेंट बाबा से मिले, अब हैप्पीएस्ट बताता हूं, फिर हम बाबा के पास गए, वहां तो नीचे बैठने लगा, गद्दी है ना गद्दी बाबा की, इधर वो है बाबा का बैठने वो नीचे बने, बाबा नहीं मेरे साथ बैठो गद्दी पर बैठो, तो मैं तो लज्जा कर रहा था भाई मैं कैसे बैठू, छोटा था बच्चा हूं मैं, तो उस वक्त मेरी उम्र कितनी होगी 24 साल होगी 25 साल होगी, तो बाबा ने बिठाया अपने साथ और प्यार भी दिया स्नेह भी दिया, बाबा के फिर वरदान देखो क्या था, बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी, वहां कहां, ये देखिए कितना बड़ा वरदान है, तो हमें तो बड़ा खुशी भी हुई, बाबा ने क्या बोला है देखो कि ये गद्दी आप बच्चों की है और यहां जो आप सब गद्दी संभालने वाले हैं, ये अगर संभालते हैं बाबा का समझ के, तो जो हमारी बहनें हैं सेंटर वाले हैं ये हैं, किसी गद्दी है, अपनी थोड़ी इनका मकान है, इनका थोड़ा है। आप भी समझते हो कि जो हमारा घर है किसका है, वो पक्का बाबा का है। जो भी चीज है समझो बाबा की है। बाबा ने अपने पास तो रखने नहीं कि स्टोर थोड़ा खोला उन्होंने रखना के लिए। बाबा को वो नहीं, वो कहता ये समझो कि बाबा का ही मैं कर रहा हूं, अपना मत समझो कि बाबा का है मैं चला रहा हूं। सब चीज बाबा की समझेंगे तो उसमें अटैचमेंट नहीं होगी। नष्टो मोह बनने का पहला ही एक तरीका है, यही एक युक्ति है, ये समझो ये बाबा का है। अगर ये समझेंगे तो अटैचमेंट नहीं, तो अटैचमेंट नहीं, नष्टो मोह बन गया। यही हमारा लेसन है, यही हमारा पुरुषार्थ है कि हम डिटैच रहें और अटैच ना हो, अंत में बाबा के सिवाय और कोई याद ना है, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। तो बाबा ने ये वरदान दिया, इससे बड़ी सेवा होगी। इतने प्रदर्शनियां बनी, इतने म्यूजियम बने, चंडीगढ़ पहला पहला म्यूजियम बना था, बाबा ने कहा वहां बनाओ, म्यूजियम बने, प्रदर्शनियां बनी, मेले बने, हमें चित्रशाला खोली वहां पर। बाबा कहते बच्चे ये चित्र बनाओ, ऐसे बनाओ, वो बनाओ। अभी देखो ये है ना पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रीगेंड, बाबा ने बताया था कि देखो पहले हम सत्युग में पैराडाइज में थे, त्रेता में भी पैराडाइज थे, द्वापर में हमारा एक क्राउन कौन ले गया, कौन ले गया बताओ, रावण ने छीन लिया। फिर उसके बाद और सिंगल क्राउन के किंग आए, उनका भी करते करते अब तो कोई वो, फिर उसका क्राउन उनकी राजाई भी खत्म कर दी, जो गवर्नमेंट ने हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट पाई वो खत्म होगी। फिर पर्स लिए, पर्स भी छीन लिए, उसे जेब हमने दिखाया था इंदिरा गांधी पर्स निकाल दी जेब में से, अभी तो निकाल दिया डर के मारे, मैंने क्या किया। हमने बाबा ने कहा बनाओ कि ये बच्चे तो डरते क्यों, बनाओ ये पर्स भी निकाल दिया बेचारों का, वो जिनको पर्स मिले थे ना वो निकाल दिया, तो हमने बनाया था उसमें पर्स निकाल रही है। तो ये इस प्रकार से बाबा बड़े चित्र बनवाते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। फिर कहते थे इसमें इसमें ये ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, ये पहला ये बल था, यानी थ्री कोट ऑफ आर्म्स का चित्र बनाओ, थ्री आर्मीज हैव रीअपीयर्ड, यादव कौरव पांडव कौन है, यादव कौन है पता है ना आपको, ये यूरोप वासी यवन और सारे यवन है, उनका हम सारी एम्बेसी में जाकर, उन दिनों में तो कोई इंटरनेट थोड़ा था भी, बता दे उनके सिंबल लाए पांचों के जो न्यूक्लियर पावर थे वो लगाया, अपना अपनी गवर्नमेंट का भी सिंबल शेर लगाया और फिर अपना त्रिमूर्ति लगाया। चित्र बाबा को बड़ा पसंद आया कि ठीक बच्चे ने बनाया, तीनों आर्मीज हैं हैव रीअपीयर्ड, यादव कौरव खत्म और पांडवों की विजय होगी। तो रियल हम नीचे लिखवाते भी थे बाबा, कहते डरने की निरप कौन कह रहा है ये, हु स्पीकिंग, ऑल माइटी अथॉरिटी, किसके माँ वाक्य है। तो जो बाबा कहता था हम वो बनाते थे और बाबा को दिखाते भी थे, इतना पसंद आता था अच्छा है। बाबा का क्या कहते थे मुझे, पूछो तुम मेरे पास हर हफ्ते आओ। मैंने कहा बाबा मैं दिल्ली में चलूंगा, 18 घंटे 20 घंटे तो ट्रेन लेगी, देखा जाए तो दिल्ली अब तो ट्रेन कितने थोड़े 11 घंटे में आती है, तब तो 18 घंटे में ट्रेन आती थी। अगर हर हफ्ते आऊंगा आऊंगा जाऊंगा इसी में मेरा टाइम तो निकल जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम वाले हम ये नहीं कर सके कि आओ हर हफ्ते आओ। हम फिर किसी न किसी प्रकार से बेचते थे। चित्र कैसे डिवेल्प हुए, जो शिव बाबा किरणों वाला कैसे बना, धीरे धीरे फिर हमने बनाया था। बाबा ने कहा मत वहां पदृष्टि में था मथुरा में, बाबा ने कहा कि बाबा को फोटो पहुंच गया, हमने चित्र दिखाया नहीं। बाबा ने कहा बच्चों ने बड़ा उसको वो किया है, मंथन बहुत किया है, लेकिन बेबीज हैं ये, पता है बेबी क्यों कहा कि मुझे तो दिखाने नहीं आए, तो हम फौरन फटाफट बना के बाबा को दिखाने आए। तो मतलब कहने का इस प्रकार से बाबा बहलाते भी थे और बच्चों को समझाते भी थे, बहलाते भी थे, बहुत आनंद और मजा आता था। बाबा हम बच्चे थोड़े थे, हम कहते हमारी तो बाबा ने पालना ऐसे की जैसे एक बाप अपने लौकिक बच्चों की पालना करता है वो। हाँ मतलब कहने का देह मान थोड़ा कर रखना हमने कोई, हम जब जगदीश जी भाई जी के पास गए तो उनका तो काम था वो प्रिंटिंग में जाना, साइकिल एक पुरानी पुरानी थी उसमें बैठ करके पीछे वो रख करके कागज रख के जाते थे। एक दफा क्या हमने 3-4 मंजिल ऊंचा था मकान, नीचे तो फिसक गए, किसे के तो थोड़ा गिर गए, तो उन्होंने क्या बोला, उनके शब्द थे इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे हो, देखे होता है क्या, समझे। तो डरा दिया मुझे तो मैंने कहा आगे क्या होना पता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त ये नहीं था, कोई भी है बाबा का काम तो करना ही है, कैसे भी करना है, निश्चय बुद्धि मीन्स कुछ भी काम हो। तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन बाबा के पत्र भी आते थे, पालना भी थी बाबा मामा की, बाबा से बहुत कम उस वक्त इतना थोड़ा बार बार मिलने आते थे, साल में एक दो दफा आते थे तब। तो उस वक्त कुछ सेंटर ये इतना सेंटर थोड़ा था, सेंटर जो थे दिल्ली यानी बॉम्बे कलकत्ता ये बड़े बड़ी वहां सेवा होती थी, यहां तो कोई सेवा थी नहीं। बाबा कहता दादियों कहता जाओ वहां जाओ यहां जाओ, यहां भी आएंगे दो तीन दिन आएंगे बाबा भेज देगा, कभी बॉम्बे भेज देगा, किसी काम से कोई भेज देते थे। तो इस प्रकार से सेवाएं हुई। अब तो हम कहते हैं बहुत समय बीत गया, और भी बहुत बातें तो बहुत है, अब कहां पहुंचे हम बताओ, कहां पहुंच गए आप, कितनी नजदीक है, क्या बनना हमको है, क्या बनना है, बाप समान बनना है ना, यही लक्ष्य है कि और कोई लक्ष्य है, बोलो बनना है पक्का, कहां तक बन चुके ये बताइए आप, कितने नजदीक पहुंचे ये भी बता दो है, कितने नजदीक पहुंचे, कितना फासला बाकी रह गया बताइए, कोई बिल्कुल नजदीक है कि अभी है फासला कुछ, बोलो है हाँ या ना, है कि नहीं, बहुत है कहते, तो वे कब बनेंगे, टाइम तो नजदीक है। देखिए हम बताए, मैं अपना जो फार्मूला बताता हूं, हम कहते हैं हम काफी सफर तय कर लिया है, हम फार माई ओन सेक बहुत सफर तय तो कर दिया, अभी है थोड़ा भी, क्या करना क्या है देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है आपने उठा लिया होगा, वो आप पार भी करके होंगे, पहली पहली स्टेज है विकर्माजीत। देखो बाबा भी हमारे पर कहते हैं कि अभी कोई विकर्म तो नहीं होता कोई, देख लो अगर अभी भी कोई विकर्म होता है तो बहुत दूर ही है, अभी तो बहुत दूर है। पहली स्टेज है कि नो विकर्म, ब्राह्मणों की क्या कहना चाहिए लाइफ से विकर्म खत्म, यानी हम अब विकर्म को जमा ना करें, ये देख लो कर्म हाथ से या मुख से या ऐसे हमारे से विकर्म नहीं होना चाहिए, किसी को दुख दे नो। पहली आप देखो विकर्माजीत तो बन गए कि नहीं, क्या समझते आप, विकर्माजीत है हाँ या ना, जो बन गया हाथ खड़ा करे, ये थोड़े है बताओ, पहली स्टेज भी अभी पार नहीं गए तो क्या करेंगे बताओ, अगर आप गुस्सा करते हैं किसी पर तो विकर्म हुआ, विकर्माजीत तो बन ही जाना चाहिए था, बन गए होंगे, ऐसे आप बोल देते नहीं, लेकिन विकर्म अब नहीं होता है। बाबा मुरली में शुरू में कहते थे बच्चे विकल वो चलो कोई हर्जा नहीं, विकर्म नहीं होना चाहिए, शुरू शुरू से कहते थे। फर्स्ट स्टेज तो पार कर ली होगी, देखो अगर नहीं कही तो ये तो बहुत गलत है, होना चाहिए पार। सेकंड स्टेज है विकल्प जीत, कोई विकल्प अब हमें नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट, आप समझते हैं सब नेगेटिव थॉट किसे कहते हैं, नो विकल्प। पहले बाबा कहते चलो भले बच्चे विकल्प आता है कर्म में मत आओ, मुरलियों में आता है अभी भी आता है, लेकिन वो पुरानी मुरली है, नो विकल्प। विकल्प अगर आया नेगेटिव थॉट आया तो आपने जो योग कमाया वो डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव से बैटरी चार्ज होती है और नेगेटिव से बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये विकल्प से जो कमाई आपने की है अगर नेगेटिव में आप आ गए, नेगेटिव थॉट्स बुरे विचार विकल्प जिसे कहते हैं, तो की कमाई डाउन हो गई, तो आप विकल्पाजीत भी चाहिए, नो विकल्प, ठीक है, ठीक है ना, नो विकल्प। ये मैं समझता हूं अभी नहीं होगा विकल्प, इतनी भट्टी कर रहे हैं, वैसे भी पुराने हैं लग रहे हैं आप तो सारे। थर्ड स्टेज क्या है, बाबा कहते हैं व्यर्थ अतीत, व्यर्थ भी नहीं चाहिए अब, यानी कर्मातीत फरिश्ता बाबा जैसा बनना है, विकर्माजीत भी बनो, वो तो हम बन ही गए मैं समझता हूं, कोई भी कर्म अब नहीं करते, ना गुस्सा करते हैं, ना किसी पर हम किसी को दुख देते हैं, ना कोई और बातें करते हैं, कोई मारपीट ये वो दुनिया में तो बहुत विकर्म हो रहे हैं ना, आप जानते हैं विकर्म कैसे कहते हैं, कोई विकर्म नहीं, कोई विकल्प भी नहीं, विकल्प अजीत। थर्ड स्टेज है व्यर्थ आतीत। देखो व्यर्थ नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं व्यर्थ भी छोड़ो। व्यर्थ किसे कहते हैं? ये एक तो एक छोड़ मोटिव है, क्यों क्या कब कैसे जो बाबा ने सुनाया है क्यों क्या, इससे भी आगे है व्यर्थ मीन। अभी देखो आप यहां बैठे हैं, अभी भी चंडीगढ़ पहुंच गए, तो क्या ये व्यर्थ है ना? ये भी व्यर्थ है। जिस समय जो संकल्प चाहिए वो आना चाहिए, ये देख लो। टू मैनी यानी भले उसमें कोई पाप नहीं बना, लेकिन व्यर्थ तो टाइम तो वेस्ट किया ना, तो व्यर्थ भी नहीं चाहिए। हमारे अगस्त बाप दादा भी कहते हैं बच्चे अब मेरे बच्चों में विकर्म तो है नहीं, विकल्प भी नहीं होगा, व्यर्थ थोड़ा थोड़ा है, अब इस व्यर्थ से भी परे जाना है, व्यर्थ नहीं चाहिए। खाम खा बैठे हैं संकल्प चलते रहे टाइम वेस्ट होता रहे, व्यर्थ नहीं चाहिए। और फिर फोर्थ स्टेज एक और है जो कि हम सभी की है, साधारण। उसे कहते हैं बाबा कहते हैं साधारण अतीत बन जाओ। साधारण भी नहीं, अच्छा अभी आप ऊपर सीढ़ी चढ़ के आ रहे थे क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, थिंकिंग नथिंग। यानी अभी आप जाएंगे पैदल क्या सोच रहे हैं? नथिंग। हम ब्राह्मणों का जो समय है और नथिंग में बहुत जा रहा है, हम बता दें आपको, ना वो बिना विकल्प है ना विकल्प है, वो है व्यर्थ भी ना हो, लेकिन हम कुछ सोचते नहीं है, पॉजिटिव नहीं है वो। जैसे वो मैं मिसाल देता हूं, जैसे ना स्कूटर होता है उसकी आप किक लगा दो, पेट्रोल जा रहा है, और न्यूट्रल पर गाड़ी खड़ी कर दो, ना आगे जाएगा ना पीछे, वहीं खड़ा है और पेट्रोल जा रहा है वो। तो अभी अवस्था ये है, नहीं आपकी तो नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी अवस्था होगी, मैं बता रहा हूं दुनिया आम जो दुनिया आम ब्राह्मणों के हम पूछते हैं अभी क्या कर रहे हो अभी इस वक्त। एक दफा जगदीश भाई जी यहां से निकल रहे थे तो किसी भाई से पूछ लिया क्या सोच रहे हो, कहता कुछ नहीं, कहता ये हो ही नहीं सकता कुछ ना हो। उन्हें इस पर ही क्लास करा दी है कि सारा कल्प हम संकल्प करते हैं, कोई ना कोई संकल्प तो होता ही है। उन्होंने कहा कल्प चलता ही संकल्प से है, अगर संकल्प डाल तो कल्प चल ही ना सके। तो यही कहना है कि मैं नथिंग, हमारा समय नथिंगनेस में जा रहा है, हम बताएं क्लियर, साधारणता में जा रहा है, ना गाड़ी आगे जाती है ना पीछे, आपकी तो जा रही होगी मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। तो करना है, और न्यूट्रल वाली जो है ना वो न्यूट्रल पर रखा हुआ है उसको मोड़ के पॉजिटिव पे कर दो। केवल साधारण संकल्पों की बजाय यही सोचो बाबा ने बड़े अच्छे गोल्डन संकल्प दिए, कुछ ज्यादा मत सोचो। कौन से गोल्डन संकल्प है? पहला संकल्प कौन सा है बताओ? फर्स्ट संकल्प कौन सा गोल्डन बोलो? यही है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा ने बोला शुद्ध आत्मा हूं। शुरू करो, हम मैं जो याद शुरू करता हूं ना, मैं ये पहले मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, माइट हूं, खुश नसीब आत्मा हूं। ये अपने बोल अंदर अंदर संकल्प करो। मैं कहता हूं योग कोई हमारा थॉट लेस लेस नहीं है कि हम सोचे ही कुछ ना बस, नहीं, ये जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उससे दो शक्तियां आपको मिलेंगी, हम बताएं क्लियर। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना ये सब, एक मिलेगी पावर और एक मिलेगी प्योरिटी। पॉजिटिव थॉट से ही प्योरिटी और पावर आती है, और कोई तरीका समझे बात, पॉजिटिव ये पॉजिटिव थॉट है। जब हम पॉजिटिव थॉट को हम जाते हैं तो वी गेट प्योरिटी एंड पावर। और सत्युग में क्या चाहिए, क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, क्राउन ऑफ पावर और क्राउन ऑफ लाइट प्योरिटी, वो इससे ही मिलेगा। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप प्योर थॉट्स को बार बार लाएंगे, उतना आपका जो है ये प्योरिटी वो का ओरा है वो, और आपका बड़ा होता जाएगा। हम निल होकर बैठ जाए कुछ नहीं, हमारा जो योग है थॉटफुलनेस का है, थॉटलेसनेस का नहीं है। हाँ, कोई एक आध थॉट तो अवश्य होगा, आप कुछ भी कर लो, मन विदाउट उसके थॉट रह ही नहीं सकता। हम यही मैं बता रहा था, मैं शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, खुश नसीब आत्मा हूं, लाइट और माइट हूं, तो उसके सात गुणों को याद करो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्योर प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, अनंत स्वरूप आत्मा हूं, सातों गुणों को याद करो और कोई संकल्प मत आने दो। व्हाट इज योगा? योग मैं जो करता हूं, योगा मीन्स पॉजिटिव थॉट्स और कोई और थॉट ना आए, फ्लो ऑफ थॉट्स हो, पूरा फ्लो, नो इंटरप्शन, और उसमें और कोई इंटरप्ट ना करे, अगर करे फिर शुरू करो उसको। मान लो आप अभी ये अंदर संकल्प आ रहा है, आपको कोई और विचार आ गया तो हटाओ, फिर शुरू करो इसको आत्मा के बारे में, परम धाम पहुंच जाओ, पता है परम धाम, ये वो भी थॉट है। शिव बाबा को देखो, वो ज्योति बिंदु है, माइक्रो स्टार है, चमक रेडिएशन उसमें क्या है, वो रेडिएट कर रहा है लाइट माइट, वो लव पीस ब्लिस सारा उसे निकल रहा है, उसको आप पर पड़ रहा है, वो उसको महसूस करो, मेरे पर पड़ रहा है, उसमें स्नान करो और बस बाबा को देखते रहो, शिव बाबा को थर्ड आई से बाबा को देखते रहो, देखते रहो, और कुछ ख्याल भी ना आए। हाँ, बीच में अगर कोई ख्याल आए भी, आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, और कोई विचार ना आए, इसे बिंदु रूप कहते हैं। कोई ना कोई विचार आएगा, तो आए तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन यही आत्मा एक उस इसी का विचार है। बाबा को देखते रहो, देखते रहो, ब्लिस आएगा उस वक्त, अनुभव किया हमने, ब्लिस होता, बहुत ब्लिस आता है, बहुत एकदम वो हो जाता है, आउट ऑफ बॉडी फीलिंग होती है, मैं देख रहा हूं। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास करना है, यानी हमें साधारण की जगह पॉजिटिव विचारों को बार बार लाना है, लाना है, लाना है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, सुन लो, कहते ये एक दफा तो मैंने कह दिया, आत्मा बैठा हूं, क्या फर्क पड़ता है, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा। भगवानो वाच किसने कहा है? अवैध बाप दादा ने, रिवाइज एंड रिवाइज एंड यू विल रियलाइज। सुना? एक बार कह दे, महात्माओं कह के बैठे, हम पूछते ना, हमारे पास शांति मन में बहुत आ गया, योग लगता है? कहते हाँ जी, सारा दिन योग भी योग है, योग में बैठे और काम ही क्या है। मैंने कहा सारा दिन योग है? कहते हाँ, और अब हमें काम नहीं, वो फिक्स डिपॉजिट रख दिया है, इनकम उससे आती रहती है, और सारा योग में मस्त है। मैंने कहा योग समझा, योग किसे कहते हैं? बाबा तो मुरली में क्या कहता है, एक लाइन में कहेगा, बच्चे योग क्या है? अपने को आत्मा तुम्हें बाप को याद करो, बस योग है ये। फिर अगले पहले में कहा, बच्चे याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है। ये भी साथ क्या देता है? हम सच कहते हैं, याद इतनी जबरदस्त चीज है, क्या नहीं कर सकती। 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध इससे बनती है, 63 जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं, दैवी गुण भी इससे आते हैं, और प्रकृति भी ऐसे पावन बनती है। इतनी बड़ी जबरदस्त याद में ताकत है, ये पॉजिटिव सोचने में ताकत है। सुना भाई, बहनों भाइयों, इस याद का बहुत बहुत अभ्यास करना है, शुद्ध विचारों को ज्यादा रखना है। भले आप चलो बिंदु रूप में नहीं टिक सकते, कम से कम शुद्ध विचार तो रख सकते हैं। जगदीश भाई कहते थे, शुद्ध विचार होंगे तो भले वो अगर नहीं निकलेगी कि हम तो गर्म तो हवा गर्मी तो आएगी कुछ, ये उससे भी अच्छा है भाई। बिंदु बन गए, बिंदु को याद अगर नहीं होता मन हो, कम से कम ये तो करो, शुद्ध विचार तो रखो, उससे भी लाभ है। शुद्ध विचारों का खजाना जमा करना भी तो योग है। ये बहुत करना है, नो नेगेटिव, नो व्यर्थ वेस्ट, ओनली पॉजिटिव। साधारण को जो हमारे साधारण संकल्प चलते हैं, बहुत कोई काम के नहीं है, उसे कोई फायदा ही नहीं है, उसकी जगह पॉजिटिव विचारों को बार 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 लाओ और साधारण को खत्म करो, तभी व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा। नेगेटिव तो पहले नहीं आए, नेगेटिव भी समाप्त और व्यर्थ भी समाप्त, आप पॉजिटिव बनते जाएंगे, पॉजिटिव विचार आते जाएंगे, उससे आप दोनों ताज मिल जाएंगे। प्योरिटी का ताज भी मिल जाएगा और रत्नों का ताज भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। और बाबा को हम देखते थे यही था, बाबा का हर कदम हम खुद देख, बाबा को देख, और बातें बहुत है लेकिन टाइम आप हो गया। बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प सदा विशेष था। जिसको भी ऐसे देख लेंगे ना, वो ध्यान में चला जाता। कई दफा देखा हूं, किसी पर ऐसे हाथ रख देंगे, ऐसा कोमल हाथ होता था, वो बड़ा खुशी से फूल जाता था। बताइए, बाबा ने बच्चों की बहुत जबरदस्त पालना की। मुख में गिट्टी खिलाई, बताओ, खुद खाना बाबा खा रहे हैं, हम जाएंगे बच्चे, बताइए कितना प्यार है बाबा। तो वो देखा आप, अब वो जमाना बीत गया, अब तो ये है दादियां हैं, उनसे मिलते हैं, ठीक है। अब भी अव्यक्त रूप में हम वो भाषणा ले सकते हैं, हम तो अब भी बाबा को याद करते हैं नौ संबंधों से। अब टाइम नहीं है, बताऊं कौन से नौ संबंधों से याद करना है। नौ संबंध, पहला कौन सा संबंध आप लगाते हैं बताओ, है? एक बोले ना, बाबा नौ, है? हाँ, पहला हमारा संबंध माता का है। माता न हो तो पैदा कैसे होंगे, माता ही पैदा करती है ना, देखा जाए माँ ही पहले बच्चे, छोटे बच्चे को बड़ा करती है। ज्ञान दूध पिलाया किसने, बाबा ने। भले हम देखो, हम बाबा जब कहते हैं ना तो दोनों बाबा है, शिव बाबा भी साथ है, ब्रह्म बाबा, दोनों बाबा साथ साथ है। हम दोनों को, हम उसको जुदा नहीं कर सकते। हम सच बताया आपको, एक उर्दू में शेर है, आदम को जुदा खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। हम बताए आप, ब्रह्मा बाबा जो कितना जबरदस्त शेर है, उनको पता नहीं कि शेर बाबा खुदा जो है ब्रह्मा आदम में आता है, उनको मालूम थोड़ा है, लेकिन शेर पहले बना हुआ, ये शायर ने कि गाया है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं। तो हम बाबा जब कहते हैं उसमें दोनों आ जाते हैं भाई, बाबा बा और बा दोनों आते हैं, समझे। हम जब पैदल चलते हैं ना, शांति बन के जाओ, हम हर स्टेप पर बा और बा याद रखते हैं, ताकि कुछ, ये भी शुद्ध संकल्प है ना, कोशिश करते हैं बाबा याद रहे, ये ना। तो मैं बता रहा था कि नौ संबंध का पहला जो है, ही इज अवर डियरेस्ट मदर, डियरेस्ट है, अति प्रिय, उसने हमें जन्म दिया। कितना माँ को सहन करना पड़ता है पता है आप, पूछो माताओं से, बच्चा पैदा कितना सहन करना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कोई सहन शब्द नहीं कहूंगा मैं, बहुत फेस किया। हम बताए आप, ब्रह्मा बाबा ने बहुत फेस किया। देखो, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए, सब खिलाफ हो गए, रिश्तेदार खिलाफ, गवर्नमेंट खिलाफ, साधु सन्यासी खिलाफ, सारा समाज खिलाफ, अकेला फेस किया। देखो, उन्हें वो भाई बंद भी खिलाफ हो गए, और कहो इनको पवित्र ना रहे, मतलब मैं कैसे कहूं, ऊपर वाला कह रहा मैं थोड़ा कोई कहूंगा। देखो बाबा ने क्या युक्ति रची, बताइए आप। अरे वो भी खिलाफ, जिनको पाला पोसा बड़ा गया वो भी छोड़ के चले गए। आप बताओ, कोई बाप अपने बच्चे को पाले पोसे बड़ा करे खिलाए पिलाए और वो धोखा दे जाए, कितना बड़ा सदमा होता है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने फेस किया। तो मैं कहता हूं मां है वो, तो मां को बहुत फेस करके हम बच्चों को बड़ा किया, आप यहां तक पहुंचे हैं। ही इज अवर डियरेस्ट मदर, ज्ञान दूध पिला के हमें हृष्ट पुष्ट बना दिया, अब यहां तक पहुंचा दिया। ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध क्या, हम क्या करते हैं, हम उसको इमर्ज करते हैं, याद में भी इमर्ज कर सकते हो आप, मां है मेरी, उसको इमर्ज करके वो याद करें मां के रूप में। शिव बाबा सामने देख रहे हैं, बाबा को तो देखना, शिव बाबा को सामने देख करके तो ये संबंध को संकल्प लाए, बाबा यू आर माई डियरेस्ट मदर। आप मदर कहेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी। सेकेंड है, ही इज अवर स्वीटेस्ट फादर, स्वीटेस्ट वो दाता है, वो दाता है, दाता बन के हमको कहां ले जाता है, देता है हमें, क्या देता है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा देता है, दे दिया आपको सबको, स्वीट होम भी ले जाना है, ले जाके आप ज्ञान में आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, बच्चा बनना मीन वर्षा मिला ही मिला, चाहे थोड़ा मिले, पद छोटा मिले, बड़ा मिले, वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको हम सत्युग में ना आए वो तो पॉसिबल नहीं है, आएंगे तो जरूर। तो बाबा के बच्चे बने, स्वीटेस्ट फादर ने हमको स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे दिया है, याद रखना है। तो उसको इमर्ज करो बाबा को के, देखो मेरे ये वर्षा स्वीट होम ले जा रहा है और स्वीट राजधानी में भेज देगा, ट्रैवल करो इसे, माइंड ट्रैवल कर रहा है। थर्ड है हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट बहुत ऊंचे से ऊंचा हमारा, पढ़ाई कितनी इजीएस्ट है, देखो माताएं पढ़ रही है, बताओ हम एक दिन मेरठ में हम गए, एक दफा मेरठ के पास गांव था कोई, वहां बहुत 200 माताएं थी, गांव गांव से आई थी, घगरे पहने हुए, ये पहने हुए, चुनिया मुन्या, मैंने क्लास कराई, एक बार ले गया था कोई, मैंने कहा माताएं कभी पहले मिले थे, कह हां हम कल पहले मिले थे, आप बताइए छोटे अनपढ़ माताएं भी जानती हैं कि देखो कितनी इजी पढ़ाई है, कलब 5-10 वर्ष का हूबहू रिपीट होता है। तो बाबा ने इतनी ऊंची पढ़ाई को पढ़ाया कैसे, कितने इजीएस्ट तरीके से पढ़ा दिया, अनपढ़ माता भी पढ़ जाती है, इसमें कोई किसी वो उसकी दरकार नहीं है, डिग्री की हो, पढ़ा लिखा हो कि नहीं है, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबके लिए पढ़ाई तो बराबर है ना। तो क्या है ये हाइएस्ट पढ़ाई ना, इजीएस्ट पढ़ाई और हाइएस्ट स्टेटस, वो भी 21 जन्मों के लिए, याद करना चाहिए, वो हमको देता है, वो है भाग्य विधाता, टीचर को भाग्य विधाता कहता है, भाग्य बनाता है, उसको भी याद करें। फिर है होलीएस्ट सतगुरु, परम पावन हमारा सतगुरु है, मुक्ति जीवन मुक्ति का हमको रास्ता दिखाता है, वो भी वर्षा देता है। देन पांचवा संबंध है अनफेलिंग फ्रेंड, गीत साथी, अनफेलिंग, धोखा देने वाला नहीं है, कहीं होते हैं फेयरवेल, क्या होता है फेयरवेयर फ्रेंड, क्या होता है, कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं, कहीं अगर वेदर ठीक है तो दोस्त बन जाते हैं, अगर और वेदर ठीक नहीं तो छोड़ जाते हैं, तो वो ऐसा फ्रेंड नहीं है वो, अगर आपके फ्रिज में बहुत सामान पड़ा तो वो आ जाते हैं खाने पीने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है, ही इज अनफेलिंग, नॉट फेयर वेदर, अनफेलिंग फ्रेंड, आप अगर उसको दोस्त बनाएंगे तो आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं, अनफेलिंग फ्रेंड, उनको दोस्त रूप में इमर्ज करके उसका हाथ पकड़ लो और चलो उनके साथ, देखो हम तो खेले बाबा से, बैडमिंटन भी खेला, हाथ भी पकड़ा, घूमे भी सही, नकी लेक तक भी गए, अनादरा पॉइंट तक भी गए, बाबा के साथ घूमे भी सही, हम तो वो सीन भी इमर्ज कर लेते हैं, अनफेलिंग फ्रेंड ये छठ। और क्या है इसके बाद, सुनो ना साजन, सुना भाइयों आपका भी कौन है साजन, कौन है, आप साजन नहीं है, आपका साजन कौन है, बोलो हाँ या ना, हाँ जी शेव बाबा, पक्का रखना, देव मान को तोड़ने का यही है कि मैं सजनी हूं, ये हम सजनी है उसकी, शेव बाबा की हम सजनी है, अन वो हमारा सुलोना साजन है, क्या करता है, हमें प्यार करता है, ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार करता है, कहां ले जाता है, फिर कहां ले जाता है, बोलो पियर घर, अपने घर परम धाम, फिर कहां भेजता है, ससुर घर भेज देता है, देखो खुद बैठ जाता है, हमें भेज देता है, कितना अच्छी बात है। और उसके बाद क्या है, सुप्रीम सर्जन भी है, फिर नेक्स्ट हम बताए, हमारे पास बड़े अनुभव आते हैं, हमें ये बीमारी थी, ये बीमारी थी, ऑपरेशन करना था, बाबा लाइट दे रहे थे उस सर्जन को, बता रहे थे मेरा ऐसा ऑपरेशन हो गया, पता लगा नहीं, अगर हम उसको सर्जन रूप में भी देखें, ही सुप्रीम सर्जन, समझे। और देन फेथफुल चाइल्ड, ये देख लो आप, हमारा बच्चा है फेथ, वो चाइल्ड बना, उसको समझो बच्चा, देखो कहते हैं ना, कई कल पढ़ रहा था जगदीश भाई की वो टेप थी, बच्चा कभी कोई पैदा होता है तो घर भर जाता है, कई दफा बच्चा आता है ना, लकी होता है, कई होंगे देखा, हमारे अभी ज्ञान में नया नया कहता यही बच्चा हमको लाया जी कहते हैं वो, तो उसकी घर की सब हालत ही बदल जाती है। तो वो तो बाबा कौन है, लकीस्ट। अगर हम उसको बच्चा बना ले अपने पास रखे तो क्या हालत, तो क्या नहीं होगा बताओ। तो क्या समझे उसको, हमारा फेथफुल अपना बच्चा बना के रखे, फेथफुल चाइल्ड। और नेक्स्ट है मोस्ट बिलविड माशूक। सुना जी, माशूक भी हमारा वही है, हमारी किसी पर आंख नहीं डूबती। बड़े ब्यूटीफुल हैं जी, बड़े बड़े लोग हैं जी, बहुत कुछ है, नथिंग नथिंग। हमारा वो सत्यम शिवम और सुंदरम है, सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, अति सुंदर भी शिव बाबा है। तो हमारा वो अति सुंदर वो माशूक भी वही है। इन नौ संबंधों से बहुत धीरे धीरे उसको इमर्ज करके योग में भी हम याद कर सकते हैं, भाषण ले सकते हैं। हम तो करते हैं भैया। एक तो ये बहुत अच्छा तरीका है, यानी एक शुद्ध संकल्प है ना, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा कर रहे हैं। और बिंदु रूप बन वो भी तो करना ही है। मैंने दादी गुलदार से पूछा था, दादी ये मुझे बड़ा अच्छा लगता, कहता अच्छा है ये, अच्छा है, लेकिन साथ वो भी करो, बिंदु बन बिंदु को भी याद करो। मैंने कहा दादी जो बाबा ने ये युक्ति बताई है पांच स्वरूपों को याद करो, इतना अच्छा है तरीका है, जितनी देर आप मर्जी करते रहो, आप कहीं और बुद्धि जाएगी नहीं, इसी में लगे रहो। निराकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निरहंकारी और आकारी, ये पांच शब्द है ना। निराकारी अपना आत्मा और परमात्मा और परम धाम सब निराकारी हो गया, निर्विकारी अब आ गया हो गया ये देवताई रूप, और अलंकारी हो गया द्वापर युग हम पूज्य हैं, और निरहंकारी ब्राह्मण ओबीडियंट सर्वेंट हैं, आकारी फरिश्ता है। ये भी पांच स्वरूप, बहुत लंबा है इसका रास्ता है, वो भी ट्रेवल आप वो भी याद कर सकते हैं। यानी अपनी बुद्धि को इन चीजों में बिजी रखो और बातों में मत जाओ, बस चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते इन्हीं बातों में लगे रहोगे तो शुद्ध संकल्प जमा होते जाएंगे। आप अगर पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फरिश्ता चल रहा है। हम भी पुरुषार्थ करते हैं, आप भी पुरुषार्थ करो, कर रहे होंगे आप। बड़ी खुशी की बात है कि हमें मौका मिला आपसे मिलने का। अब मैं विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा रहा आज का दिन है 10 जुलाई, जब हमने हम ये कहेंगे कि ये कह सकते हैं साकार बाबा को नहीं देखा, तो आज आतम भाई ने हम सबको साकार बाबा दिखा दिया, तो हम सब ने देखा है, क्योंकि बाबा ने तो हम सबको पहले से ही मर्ज करके अपनी रचना सूक्ष्म रूप में तो पैदा कर दी थी। तो अव्यक्त रचना बाबा की ज्यादा है, आप सब बाबा के अव्यक्त रूप में आए हुए बच्चे हैं। आतम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। योग की भी आपने बहुत सुंदर विधि बताई, अब इसी संबंधों से ही बाबा की याद में खो जाएंगे। ओम
भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहें।